الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ مکتبہ شاملہ سے متعلق ہمارا ورک شاپ ہے جو کہ تین سیشنز یا تین دن انشاءاللہ جاری رہے گا. دو دو گھنٹے کے تین سیشنز ہیں اور ہر سیشن میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ پہلے ڈیڑھ گھنٹے میں مکتبہ شاملہ کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا جائے, اس کو سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رہے, اور آخری آدھے گھنٹے میں ہم انشاءاللہ جو بھی شرکا ہیں, پارٹیسپینٹس ہیں, ان کے سوالات لیں گے اور ان سوالات کی انشاءاللہ توضیحات آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. سب سے پہلی چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اسلامی علوم کی جو لائبریریز ہیں یا جو سافٹ ویئر ہیں ان کی اپنی ایک تاریخ ہے جس پر مختصرا آپ کے سامنے میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. کم و بیش یہ 20 سے 25 سال, کم و بیش 25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس انفارمیشن ایج میں اسلامی علوم کی لائبریریز بھی اصل میں ان کو ڈیجیٹائز کیا گیا, سافٹ ویئر کی صورت میں اس کو بنایا گیا. تو عرب دنیا میں بعض ایسی کمپنیاں تھیں کہ جنہوں نے پروفیشنلی کام کیا اور اس کو باقاعدہ تجارتی بنیادوں پہ اس کام کو اٹھایا اور باقاعدہ اس پر بڑی زبردست چیزیں دنیا کو متعارف کروائیں. یہ یعنی 90s کی بات ہے, 90s کے وسط کی بات ہے کم و بیش. تو اس میں بہت سی ایسی عرب کمپنیاں تھیں حرف کے نام سے, صخر کے نام سے, پھر بعد میں تراس کے نام سے, عریس کے نام سے, جنہوں نے بہت زبردست سافٹ ویئر علوم اسلامیہ کے ہر علم اور فن میں الگ الگ سافٹ ویئر بھی متعارف کروایا تھا اور لوگ ظاہر ہے اس کو خریدتے تھے. اس وقت انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ شیوع نہیں تھا دنیا میں, تو جن لوگوں کے پاس یا جن لوگوں کے علم میں تھا یا جن کی رسائی تھی وہ ایک لمیٹڈ یوں سمجھیں کہ استفادہ لوگ اس سے کر رہے تھے. اور انہوں نے جیسے ہر علم و فن کا مطلب یہ ہے کہ عربی زبان میں, شاعری میں, قرآن مجید کے علوم پر, تفاسیر پر, حدیث پر اور تخریج حدیث پر الگ سے سافٹ ویئر, اسی طرح فقہ, اصول فقہ, سارے علوم و فنون کو انہوں نے اپنے سامنے رکھ کر ہر ایک پر سی ڈیز یا ڈی وی ڈیز تیار کر کے سافٹ ویئر فروخت کیے. اس کے بعد وہ اس سطح پر بھی پہنچے کہ انہوں نے پورا کا پورا جامع لائبریری, کمپریہنسو لائبریریز بھی تشکیل دیں ڈی وی ڈیز میں یا یوں سمجھے پین ڈرائیو میں, یو ایس بی میں, باقاعدہ انہوں نے دنیا بھر میں فروخت کیا اس کو. تو یک بیک پھر کچھ لوگوں کی انفرادی کاوش سے مکتبہ شاملہ 2005 میں پہلی مرتبہ سامنے آیا. ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو کہ ایجپشن ہیں, ڈاکٹر حسام, انہوں نے سعودی عرب میں غالباً وہ مقیم تھے, انہوں نے پہلی مرتبہ مکتبہ شاملہ کو انٹرنیٹ پر فری لانچ کیا. یعنی پہلے کمپنیاں اپنا تجارتی کام کر رہی تھی دنیا بھر میں, جو لوگ واقف تھے یا جن کی رسائی تھی یا جو افورڈ کر سکتے تھے ان تمام سافٹ ویئر سے استفادہ کرنے والے محدود ایک دنیا تھی. اب جب یہ مکتبہ شاملہ 2005 میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر حسام نے انٹرنیٹ پر فری دستیاب کیا لوگوں کے لیے, تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پہلا جو ورژن تھا وہ لمیٹڈ کتابوں کا تھا اور اس میں فیچرز اور سہولیات بھی بہت محدود تھیں, لیکن لوگوں نے بہت پسند کیا اور لوگوں نے بہت زیادہ تحسین کی. ایک ہی سال بعد انہوں نے دوسرا ورژن اس کا متعارف کروایا, وہ جو کہ اس سے ذرا ایڈوانس ورژن تھا. ذرا ایڈوانس ورژن ایک ہی سال بعد 2006 میں مکتبہ شاملہ کا آیا ہے. اچھا, اس کے بعد کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹس آتی رہیں, لیکن 2 سال بعد یعنی 2008 میں تیسرا ورژن بھی انہوں نے لانچ کیا اور فری دنیا کے لیے فری انٹرنیٹ پر اس کو مہیا کر دیا. پوری دنیا کے لوگ اس کو اس وقت سے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر رہے تھے. اچھا, اسی تیسرے ورژن میں جو کہ 2008 میں آیا تھا, इसमें पे दर पे कुछ ना कुछ अपडेट्स वो करते रहे, यानी वर्जन असल में यही रहा, कुछ अपडेट्स हुई हैं और इसी को स्टैंडर्ड मकतबा शामिला का वर्जन कहा जाता है। यानी 2008 से 2020 के अभी मार्च तक यही स्टैंडर्ड वर्जन मकतबा शामिला का रहा है, सिवाय इसके के कुछ ना कुछ अपडेट्स हुई हैं और बहुत सी किताबों की उन्होंने जो लाइव अपडेट का ऑप्शन रखा हुआ है कि जब जब वो किताबें उस पर अपलोड करते थे तो लाइव अपडेट के जरिए से लोग बेशुमार किताबें वक्तन फवक्तन अपने अपने मकतबा शामिला की जो लाइब्रेरी अपनी, मैं मकतबा शामिला के तीसरे वर्जन के हवाले से बता रहा था कि 2008 में ये वर्जन पहली मरतबा आया, उसके बाद अपडेट्स भी आती रहीं और किताबों की अपडेट्स और किताबों के इजाफे भी मुसलसल होते रहे, लेकिन स्टैंडर्ड वर्जन एक ही रहा। 2010 में फिर ये जो लोग थे जो इसके मुंतजिम थे, इसको लॉन्च करने वाले थे, जिनकी खिदमात थी, उन्होंने एक बाकायदा इदारा भी रियाज में बनाया और वो भी आज तक कायम है। अब ये है कि इसका एक आखिरी वर्जन अभी अभी मार्च में आया है, रमज़ान में आया है 2020 में, और वो चौथा वर्जन है। अब ऑफिशियली उन्होंने अपनी वेबसाइट पर पुराना स्टैंडर्ड वर्जन हटा दिया है, यानी वो अब वहाँ अवेलेबल नहीं है। इल्मी दुनिया में सारे तालिब इल्म मुहक्किकीन उलमा सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, हर जगह स्टैंडर्ड वर्जन चल रहा है, उसकी भी बहुत सी सूरतें हैं मुख्तलिफ, मैं अभी आपको बताता हूँ तफासिल। तो अब जो चौथा वर्जन आया है उसमें अलबत्ता वो अभी अधूरा है, खुद उन्होंने ये बात बताई है, अगरचे बहुत से पहलुओं से काफ़ी एडवांस और बहुत फास्ट उन्होंने उसको बनाया और इससे थोड़ा मुख्तलिफ भी है वो, लेकिन अभी उन्होंने खुद उस पर ये बात बयान की है कि अच्छा जी, तो उसमें ये उन्होंने खुद वेबसाइट पर दिया है कि अब वक्त के साथ उसको वो इसी तरह रिच बना देंगे, सारे फीचर जिस तरह इसमें है इससे भी ज़्यादा एडवांस ले जाएंगे, इस वक्त स्टैंडर्ड वर्जन से बहुत पीछे है वो। ठीक है, तो आज हम जो जमा हुए हैं और इस सारे वर्कशॉप में जो कुछ हम सीखेंगे वो तीसरे और स्टैंडर्ड वर्जन के हवाले से ही सीखेंगे, ठीक है ना। और इसमें भी ये अर्ज करूँ कि इसका एक ऑफिशियल वर्जन है जो कि मकतबा शामिला की वेबसाइट पर 10-12 साल से मौजूद रहा है, उसमें स्टैंडर्ड वर्जन में तो 6000 समथिंग किताबें हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन चूंकि ये एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर किताबें डाली भी मजीद जा सकती हैं, इससे निकाली भी जा सकती हैं, इसमें बहुत कुछ एडिटिंग हो सकती है, तो दुनिया भर में बहुत से इदारों ने ये काम किया, बहुत से अफराद ने ये काम किया कि उन्होंने इसी सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सी बेशुमार उलूम व फ़नून की किताबें इजाफी शामिल करके, उलूम इस्लामिया से बाहर की भी कुछ, तिब वगैरह के भी शामिल करके अपने अपने अलग अलग वर्जन भी बनाए हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड वर्जन जो था वो 6000 समथिंग किताबों का था, उसके बाद इजाफे होते रहे ऑफिशियल किताबों के, लेकिन हम ये देखते हैं कि एक मकतबा शामिला नुस्खा मक्किया भी है जो 10000 किताबों का है। अच्छा, एक नुस्खा वक्फिया कहलाता है जिसमें 29,000-30,000 किताबें हैं। एक इसके अलावा भी खैर नुस्खे हैं, मेरे पास एक और नुस्खा भी है शामिला अज़हबिया, उसमें भी इसी तरह कमोबेश 30,000 के करीब किताबें हैं। बाज़ ऐसे लोगों ने इजाफे किए कि इसकी मकतबा शामिला की किताबों के हर किताब के साथ जो असल PDF किताब है वो भी शामिल कर दिए, तो वो गोया के एक एक 100 GB के भी वर्जन दुनिया भर में आप इंटरनेट पर तलाश करेंगे तो मिल जाएंगे आपको। तो ये थी मकतबा शामिला की मुख्तसर तारीख के इस तरह इसका आगाज हुआ है। जी ये जरा सा म्यूट कर दें माइक आप हजरात के, बाज़ जगहों से ये खलल आ रहा है वीडियो और ऑडियो दोनों का, बाज़ जगहों से ऑडियोज भी आ रही हैं और वीडियो भी। मेरी आवाज पहुंच रही है जी?
जी आमिर भाई आप जारी रखिए।
जी जी, ये हसनैन भाई कुछ वीडियोस या ऑडियोस की आवाजें आ रही हैं तो जरा उसको देख लीजिएगा
जी। अच्छा, मैं उन्हें कर रहा हूं।
मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो तारीख अब मकतबा शामिला या उसके मुख्तलिफ वर्जन्स की आपके सामने है, उसके बाद एक तो ये खुद समझ लें कि मकतबा शामिला جو ہے مکتبہ سے مراد لائبریری ہے, اور شاملہ کا ورڈ ظاہر عربی ورڈ ہے, شاملہ یا شامل سے مراد جامع, کمپریہنسو یا اہم ترین چیزوں کا احاطہ کرنے والی چیز, اور جامع چیز یعنی ایک ایسی لائبریری جو کہ اپنے علم و فن کے لحاظ سے ضروری تمام چیزوں کا احاطہ کر رہی ہے, ایک جامع لائبریری ہے. اور یہ صرف لائبریری ہی نہیں ہے بلکہ ریسرچ سافٹ ویئر بھی ہے. لائبریری کا مطلب ہے کہ آدمی صرف مطالعہ کر سکتا ہے, اس میں یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف مطالعہ کر سکتے ہیں کتابوں تک رسائی اور اس کو پڑھنا, کتابوں کو باہر بھی لا سکتے ہیں, دوسری کتابیں اندر بھی ڈال سکتے ہیں, جو بھی علمی مواد ہے اس کو ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں, کتابوں کے اندر ہم ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, کتابوں کے اندر قرآن مجید کے اندر, حدیث میں, حدیث کی شروحات میں, عربی شاعری میں, ادب میں, تاریخ میں, سیرت میں, تمام علوم و فنون میں جو چیز ہم نے تلاش کرنی ہے, لفظ کی صورت میں, جملوں کی صورت میں, اشعار کی صورت میں, آیتوں کی صورت میں, مسائل کی صورت میں, کہ بھئی ایک کوئی علمی مسئلہ ہے اصول فقہ کا, قواعد فقہی آپ تلاش کر رہے ہیں, تو ہر چیز کی تلاش اس میں ہو سکتی ہے. ایک کتاب میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے, دو میں بھی, اور 30,000 کتابوں میں بیک وقت بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں. مختلف کیٹیگریز اور مجموعے آپ کے سامنے کتابوں کے ابھی آ جائیں گے. تو یہ اس کی صورتحال ہے. اسی طرح آپ بعض ایسے ورژن ہیں جس میں جو کتاب آپ نے کھولی ہے وہی کتاب, وہی ایڈیشن جہاں سے وہ چھپا ہے, ہو بہو وہی کتاب آپ پیرلل پی ڈی ایف کی صورت میں بھی ساتھ کھول کر دیکھ سکتے ہیں اور ٹیلی کر سکتے ہیں کہ جو صفحہ یہاں ہے وہی صفحہ وہاں ہے, جو حاشیہ یہاں ہے وہاں بھی ہے یا نہیں ہے, اور پیج نمبر میں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے. اس طرح کے کام بھی ہو سکتے ہیں. کوئی چیز ہم نے پڑھی ہے اور اب بند کر کے جا رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ بک مارک لگا لیں, تو بک مارک لگا کے ہم اسی جگہ سے دوبارہ آ کے اگلے دن ایک ہفتے بعد جب چاہے مطالعہ شروع کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی صورتحال ہے, یہ اس کی تفصیلات ہیں. اچھا جی, اب اہم ترین بات یہ آتی ہے کہ یہ جو کمپریہنسو لائبریری ہے یا احاطہ کرنے والی ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو تمام علوم و فنون کا اسلامی احاطہ کر رہا ہے, اس کو جب ہم اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا اپنے پاس چلاتے ہیں, تو دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, جس کے بغیر آپ کو اس کو چلانے میں, انسٹال کرنے میں, رن کرنے میں مشکل پیش آئے گی. تو دو چیزیں بہت اہم ہیں جس کو آپ سمجھ لیں. پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم میں اگر عربی اسٹینڈرڈ آپ کا کی بورڈ نہیں ہے آپ کے پاس, تو آپ ریجنل سیٹنگز میں جائیں اور لینگویج پریفرنسز میں جا کر, اگر عربی کی بورڈ اسٹینڈرڈ والا نہیں ہے تو سعودی عرب کا عربی کی بورڈ آپ اس میں انیبل کر لیں. کیوں ضروری ہے کہ جب سافٹ ویئر عربی زبان میں ہے تو جو کچھ آپ تلاش کریں گے تو وہ لکھ کر کریں گے, تو لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عربی میں لکھیں, آپ اپنے انگریزی یا اردو کی بورڈ سے تو نہیں لکھ سکتے اس میں. اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ریجنل سیٹنگز میں جا کر عربی زبان کا کی بورڈ جو کہ سعودی عرب ہوگا اس کو آپ سلیکٹ کریں اور اس کو ایڈ کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر اردو اور انگریزی کا کی بورڈ تو ہے ہی, وہ کی بورڈ بھی آپ کے پاس آ جائے گا, جس کے بعد آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. شاملہ میں آٹومیٹیکلی آپ جب ٹائپ کریں گے تو وہ اسٹینڈرڈ عربی کی بورڈ ہی سے آپ ٹائپ کریں گے. یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے. دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, بسا اوقات لوگ یہ کہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد سیٹ اپ بھی چلایا ہے لیکن ہمیں کچھ ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں آ رہا, عربی تو دکھائی نہیں دے رہی, کچھ گاربیج سا ہے, یہ چائنیز لینگویج ہے کیا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سسٹم کو ہم نے عربی سافٹ ویئر کے لیے انیبل نہیں کیا. تو اس کے لیے بھی ضروری کیا ہے کہ ریجنل سیٹنگز ہی میں آپ کو ایک ٹیب ملے گا ایڈمنسٹریٹو, اس میں جا کر جو سسٹم لوکیل ہے اس کو چینج کرنا ہوتا ہے, چینج سسٹم لوکیل یہ لکھا ہوگا اس پر, اور اس کو آپ جب جا کر چینج پہ کلک کریں گے, کلک کرنے کے بعد بھی وہاں اصل میں آپ نے سعودی عربیہ کو جا کر کلک کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے, اوکے کرنا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے پہلے سے ڈاؤن لوڈ اور جو ہے انسٹال کر رکھا ہوا ہے تو آپ کو بالکل ٹھیک سے وہ چلنا شروع ہو جائے گا, لینگویج آپ کو دکھائی دے گی کہ عربی ہے اس کی اس کو. اور اگر نہیں کیا تو پہلے یہ دونوں چیزیں, کی بورڈ और ये जो आपको मैं बताया कि नॉन यूनिकोड जो वो है, यानी दूसरी किसी भी जबान की, अंग्रेजी से हट के कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा जर्मन जबान में, डच जबान में, अरबी में, तो उसके लिए क्या है कि हमने उसको इनेबल करना होता है उस लैंग्वेज को, ताकि जिस जबान में वो सॉफ्टवेयर बना हुआ है सिस्टम उसको सपोर्ट करे। जब उसको सिस्टम सपोर्ट करेगा तो फिर आपको वो लैंग्वेज दिखाई देगी, उसके बगैर आप इंस्टॉल भी करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ये दो चीजें हैं रिक्वायरमेंट की। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि आपके सामने ये स्क्रीन अब देख रहे हैं, मकतबा शामिला एक मैंने वर्जन अपने पास खोल रखा है, इसमें हम बेतरतीब चीज़ों को सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस मकतबा शामिला में चंद एक चीज़ें ये भी जहन में रखें कि अब हम इन आइकन्स को सीखने के लिए जा रहे हैं कि इसमें क्या फीचर्स हैं, क्या सहूलियात हैं, इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाए, मुताला करते हुए, किसी दर्स की, किसी लेक्चर की तैयारी करते हुए और रिसर्च करते हुए, लोग पीएचडी थीसिस भी लिखते हैं और रिसर्च आर्टिकल्स भी लिखते हैं, किसी खास मौजू पर काम कर रहे होते हैं, तो इस हर तरह के काम में, हदीस की तखरीज कर रहे होते हैं, तफसीरों पर काम होता है, तफसीरों का तकाबुली मुताला करने का कोई प्रोजेक्ट है, उन तमाम कामों में ये बेहतरीन तरीके से मुआविन हो सकता है, बशर्ते कि हम इसको पूरी महारत से सीखें भी, इस पर मश्क भी करें, इसको बार बार जो कुछ हमने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करके, यानी बिल फेल इसकी मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो खास जो चीज़ें इस शामिला की है, जो कि पुराने सॉफ्टवेयर से ज़रा सी मुख्तलिफ भी हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया कि 90s में जो सॉफ्टवेयर आए थे जो हम खरीद कर लेते थे, और उसको मैंने खुद भी इस्तेमाल किया है, शामिला को भी मैं आगाज ही से यूज़ कर रहा हूँ, तो उन सॉफ्टवेयर से जिन कंपनीज ने तिजारत की थी और वो DVDs में या एक्सटर्नल ड्राइव में भी होते थे, वो उनमें और शामिला में फ़र्क क्या हुआ, तो कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो उन सब में नहीं थी। नंबर एक ये है कि ये मुफ्त दस्तियाब है, मकतबा शामिला पूरी दुनिया में लोग कहीं भी बैठकर इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चला सकते हैं, एक इसकी ये सबसे बुनियादी खूबी है। उसके बाद ये ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, एक मरतबा आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है, उसको रन किया है, तो अब इसको चलाने के लिए इंटरनेट आपको आपके लिए ज़रूरी नहीं है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मुफ्त भी है और ऑफलाइन भी है। अच्छा, उस जो पुराने सॉफ्टवेयर थे उन तमाम लाइब्रेरीज में, जो कि चाहे वो जामे लाइब्रेरीज हों या हर इल्म और फन की अलग DVDs थी, उनमें सारा मटीरियल, सारा इल्मी मवाद हमारे तुरास से मुतालिक था, उलमाए सलफ की चीज़ें होती थी, कदीम उलमा की चीज़ें सारी ही, जो उम्महात होती हैं कुतुब, वो सारी की सारी कमोबेश उनमें होती थी। लेकिन मकतबा शामिला की खूबी ये है कि इसमें कदीम उलमा और माहिरीन फ़न की तुरास की तमाम मराजे व मसादिर भी मौजूद हैं, और बहुत वाफिर मकदार में मौजूद हैं, जो उन सॉफ्टवेयर्स में इतनी तादाद में नहीं थे, वो तमाम मराजे व मसादिर। और प्लस ये कि जो मुआसिर उलमा है, दौरे हाजिर के उलमा हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें, किताबें, तहकीकात सब के सब आपको इसमें मिलेंगी भी, और वक्तन फवक्तन अपडेट भी होकर हमें इजाफी चीज़ें भी मिलती रहती हैं। तो ये कदीम व मुआसिर लाइब्रेरी का एक लिहाज से मजमूआ है, तो गैर मामूली चीज़ हो गई। कदीम सॉफ्टवेयर में ये भी था कि कोई किताब आप दोबारा बाहर से अंदर नहीं ला सकते थे अपनी, या अपनी कोई किताब लिख कर शामिल नहीं कर सकते थे, या इससे किसी किताब को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, जबकि मकतबा शामिला में ये सहूलत मौजूद है कि आप इससे बाहर भी चीज़ें लेकर जा सकते हैं, यानी किताबों को इससे बाहर निकाल सकते हैं वर्ड फॉर्मेट में भी, और इसी यूनिकोड फॉर्मेट में जिसमें शामिला में किताबें मुरतब कर दी गई हैं। तो ये इस तरह की बहुत सी ऐसी इजाफी खूबियाँ हैं और खसूसियात हैं मकतबा शामिला की, इस खास सॉफ्टवेयर की, जो कि दूसरे बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे रहे हैं उनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी प्रोग्राम में ये खसाइस मौजूद नहीं थे। तो ये है। अब हम चलते हैं जी, आप देखें राइट क्लिक कर रहा हूं ऊपर, एक आपको पहला बटन दिखाई दे रहा है, हर आइकॉन पर जब आप जाते हैं शामिला में, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा कि ये किस काम का है जी। ठीक है, और ये जो मेन इंटरफेस है मकतबा शामिला का, जो इसकी तस्वीर है, ये जाहिर तस्वीर हर वर्जन की अलग भी हो सकती है, हम अपनी कोई और तस्वीर भी इसमें रख सकते हैं, यानी ये तस्वीर चेंज हो सकती है। अगर हम इस तस्वीर पर क्लिक करते हैं, इसी बैकग्राउंड पिक्चर पर क्लिक करते हैं, तो उस सूरत में आप देखें कि ये एक खुल जाता है, ये एक बॉक्स है आपके सामने, ये बॉक्स खुल गया है। इस बॉक्स को आप देखें, ये क्लिक करने पर खुला है, मैंने दोबारा इसको बंद भी कर दिया है। यही बॉक्स आप देखें, अगर यहां जाऊं मैं तो लिखा है इख्तियार किताब, कि कोई किताब आप मुंतखब करनी है, कोई किताब पढ़ने के लिए चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है, तो इस पहले आइकॉन को हमने प्रेस करना है, क्लिक करना है। देखें उस सूरत में भी यही बॉक्स खुल गया है, यानी अगर मेन पेज पे क्लिक करूं तब भी आता है, और अगर यहाँ इख्तियार किताब इस पर क्लिक करूं तब भी ये सामने आ जाता है, यही बॉक्स। ठीक है, अच्छा, अब आप देखें कि इस बॉक्स में हर चीज का हम मुताला करेंगे कि ये क्या है और ये हमें क्या बता रहा है। इसमें आप देखें जी, ये ऊपर मैंने क्लिक किया है मजमूआत, मजमूआत का मतलब ये सारे मजमूए हैं, ये फोल्डर्स हैं, किसके, इन फोल्डर्स पर आप देखें अनामीन लिखे हैं, हर फोल्डर का तफासीर, उलूमुल कुरान, उलूमुल हदीस, मुतूनुल हदीस, शुरुहुल हदीस, ठीक है, ये सारे वो फोल्डर्स हैं या कैटेगरीज हैं मकतबा शामिला की, कि उलूमुल हदीस की अगर किताबें हैं, अगर आपने यहाँ क्लिक किया प्लस के निशान पर, तो उलूमुल हदीस की जितनी किताबें यहाँ मौजूद होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी कि भाई ये किताबें इनके पास हैं। ठीक है, इसको दोबारा बंद कर देते हैं। तो ये सारे फोल्डर्स आप अनामीन के साथ देखें कि इन फोल्डर्स में से जिस फोल्डर पर क्लिक करेंगे उस इल्म और फन की किताबें आपके सामने आ जाएंगी। ये किताबों के सामने जो नंबर्स हैं, नंबर्स के बारे में समझें कि ये मुसन्निफ की जो तारीख वफात है ये वो साल लिखा गया है, यानी ये जो नंबर्स है ब्रैकेट में, ये तमाम जो ऑथर्स हैं उनकी तारीख वफात है जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अच्छा, आपके सामने ये सारे मजमूए मौजूद हैं फोल्डर्स। मिसाल के तौर पर आपको कोई फोल्डर, किसी फोल्डर की तलाश है, और जाहिर है आप नीचे नहीं जाना चाहते, ऊपर लिख कर उसको तलाश करना चाहते हैं, तो इसमें क्या है, आप ऊपर जाएं, ऊपर जाकर मिसाल के तौर पर मैंने लिखा तारीख, देखिए तारीख लिखा तो फोल्डर मेरे सामने आ गए। ठीक है जी, अगर कोई फोल्डर हमने तलाश करना है, पूरी फहरिस्त नीचे तक जाकर नहीं देख सकते, वक्त को बचाना है, तो मिसाल के तौर पर मैं यहां लिख रहा हूं फिक मालकी लिखा है मैंने, तो आप देखें वो फोल्डर आप सहाब हमारे सामने आ गया है। ठीक है, तो ऊपर की ये बार किस मकसद से दी गई है कि आप इन तमाम फोल्डर्स में से जिस फोल्डर की तलाश में है वो ऊपर लिख कर फौरी तलाश कर। ठीक है, ये ऊपर की बार। अच्छा, अब जो नीचे बार है आप देखें, एक बार ये नीचे है, जो नीचे बार है इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि अगर कोई किताब आपने तलाश करनी है तो उसका नाम यहां लिखें। जब हम किताब तलाश करने लगते हैं तो एक तरीका तो बहुत सादा है ना, कि हमने तफासीर पर क्लिक किया और कहा कि भाई जी मुझे तफसीर मुजाहिद देखनी है, तफसीर इब्न मुंजिर पढ़नी है, तो आप डायरेक्ट जा रहे हैं कि भाई मैंने फोल्डर में जाके खुद तलाश करना है, लेकिन आप कहते हैं नहीं, मुझे फोल्डर में तलाश नहीं करना, किताब का नाम मेरे इल्म में है तो मैं चाहता हूं कि वो किताब मुझे यहीं से मिले। ठीक है, तो अब आप नीचे नाम लिखें उस किताब का जो आपको मतलूब है, मसलन मैंने मौत्ता मालिक लिखा है नीचे। ठीक है, तो अब मौत्ता मालिक लिखने के बाद हर वो किताब या हर वो शरा जिसमें मौत्ता मालिक का लफ्ज उसके टाइटल में होगा, जैसे ये शरा है देखिए, तनवीर उल हवालिक शरा मौत्ता मालिक। ठीक है, तो मौत्ता इमाम मालिक की शरा के अंदर ये नाम आ गया मौत्ता मालिक, तो अब आप कहते हैं जी मुझे शरा नहीं, मौत्ता मालिक खुद किताब चाहिए, तो आप दोबारा ये देखें, लिखने के बाद जैसे ही लिखा खुद से मौत्ता मालिक आया, अब आप यहां देखें ये है बहस अन किताब फिल कुतुबी कुल लिहा, तमाम किताबों में, फोल्डर्स की तमाम किताबों में आप किताब को तलाश कर रहे हैं इससे। दोबारा क्लिक करें तो देखें ऊपर मुअत्ता मालिक आ गया। आप कहते हैं जी ये वाली मुझे नहीं चाहिए, दूसरी चाहिए, अब्दुल बाकी की तहकीक। दोबारा क्लिक कर लें तो ये आ गई। एक बार और क्लिक करें, जितनी मर्तबा क्लिक करेंगे जो किताब भी ऐसी है जो मुअत्ता मालिक है वो आती चली जाएगी। ठीक है, आपको कुछ देर में पता चल जाएगा कि भाई 2, 4, 5, 6 किस्म की किताबें हैं या शुरुआत हैं जिसमें मुअत्ता इमाम मालिक है। जैसे ही मुअत्ता पर क्लिक हो रहा है, देखें आप जिस किताब पर भी आप क्लिक करेंगे मुअत्ता की, नीचे कुछ मालूमात है यहाँ, ये देखें इस बॉक्स में कुछ आपको मालूमात दिखाई दे रही हैं। इसको जरा गौर से देखें, इसमें क्या है, यानी जिस किताब को आप क्लिक कर रहे हैं उस किताब के बारे में कुछ ये इंफॉर्मेशन है कि मौलिफ कौन है, ये किस कैटेगरी की किताब है, किस मजमूए की किताब है। देखें मुतूनुल हदीस, ये जिस कैटेगरी की है वो मुतूनुल हदीस है। ठीक है, मौलिफ का नाम भी है, उसकी वफात भी है, कहाँ से छपी है, कितनी जिल्दें हैं, और इसकी जो नंबरिंग है, लिखा है तरकीमुल किताब मुआफिक लिल मतबू, यानी जिस तरह ये छापा है, ये जो एडिशन है जैसे वो छपी हुई है उसी तरह इसमें हदीस की नंबरिंग दी गई है इस छापे में, इस एडिशन। ठीक है, तो जिस किताब पर क्लिक कर रहे हैं उसकी कुछ मालूमात हमें इस बॉक्स में दिखाई दे रही है। देखें आप मुस्नद अबी दाऊद अत्तयालसी, इस पर क्लिक किया तो यहां मालूमात आ गई। अब आप कहते हैं जी ये मुझे ये वाला बॉक्स चाहिए ही नहीं, ये नहीं आना चाहिए इस वक्त, मुझे ये दरकार नहीं है, तो आप देखें ये दूसरा एक यहाँ आइकॉन है, ये इजहार या इख्फा मालूमात अनिल किताब, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो वो मालूमात देखे गायब हो गई। मैं मुस्नद शाफई पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन वो मालूमात नहीं आ रही है, अल जामे इब्ने वहब पे कर रहा हूँ कोई मालूमात नहीं है, इमाम अबू यूसुफ की किताबुल आसार पर कर रहा हूँ मालूमात नहीं है, क्योंकि मैंने यहां से इसको डिसेबल कर दिया है। अगर मैं इसको दोबारा इनेबल करूं, देखें किताबुल आसार की मालूमात आ गई है, तो हम चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं इन मालूमात को किताबों की। ठीक है, अच्छा जी, अब जो किताबुल आसार की मालूमात मैंने देखें दोबारा खोल दी हैं, अब खोलने के बाद आप कहते हैं कि इसी किताब की कुछ मजीद भी मालूमात चाहिए मुझे, तो आप देखें बराबर में है बिताकतुल किताब, जिस किताब को आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसका कार्ड है ये। ठीक है, जिस किताब पर भी जाएंगे उसका कार्ड यहां होगा, तो जैसे ही किताबुल आसार पे क्लिक किया इसका कार्ड आप खोल कर चाहते हैं कि कुछ मुसन्निफ के बारे में, किताब के बारे में और इस एडिशन के बारे में इजाफी और बेहतर मालूमात मुझे फराहम कर दी जाए, ये मुख्तसर मेरे लिए काफी नहीं है, तो बिताकतुल किताब पर क्लिक किया तो ये क्या है आपके सामने, किताब की वही मालूमात भी आ गई है जो अभी आपके सामने थी, और देखें ऊपर कैटेगरी भी आ गई है कि ये किताब मुतूनुल हदीस की वही कैटेगरी से है, जितनी भी मजमूआत फोल्डर्स आपके सामने थे उसमें से इस कैटेगरी की है। उसके बाद अनिल किताब में क्या है कि ये किताब के बारे में तफसीलात हैं कि किस नाम से, कैसे छपी, मुसन्निफ से इसकी निस्बत की क्या सूरत है इल्म की दुनिया में, तो आप देखें किताब के बारे में मालूमात है मौलिफ के साथ साथ किस किस नाम से कैसे छपी है और मौलिफ के साथ इसका इस्तेनाद और इसकी निस्बत इल्मी दुनिया में किस दर्जे में साबित है, ये सारी देखें किताब के बारे में इजाफी मालूमात बिताकतुल किताब में मिली है। और इसके बाद देखें मौलिफ के बारे में कि आप इसके राइटर के बारे में मजीद जानना चाहते हैं, तो ये इसका एक मजीद भी आप देखें कि इस किताब से अल आलाम से आपको ये मजीद मालूमात भी इमाम अबू यूसुफ के बारे में फराहम कर दी गई है। ठीक है, अच्छा किसी भी किताब के साथ अगर ये लॉक आपको दिखाई दे जो कि येलो कलर में आपके सामने है, तो इसका मतलब ये होता है कि मकतबा शामिला की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या ऑफिशियल लॉन्च करने वाले हैं, ये किताब उनकी तरफ से ऑफिशियल किताब के तौर पर मकतबे में शामिल की गई है, ये इस वर्जन में या इस लाइब्रेरी में किसी मैंने आपने या किसी दूसरे आलिम ने तालिब इल्म ने जो शामिल कर लेते हैं लोग, उन किताबों में से नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ से दाखिल की गई है इस सॉफ्टवेयर में। अगर हम इस लॉक को क्लिक करेंगे तो यही किताब इनकी वेबसाइट पर भी डाउनलोड के लिए जिस पेज पर मौजूद है डायरेक्ट उस पेज पर हमें ये लिंक लेकर चला जाएगा। ठीक है, इस लॉग के बारे में देख लें, ये जगह जगह पर आएगा। अच्छा, ये जो एरोज हैं ये आमतौर पर ये आपके काम में नहीं आएंगे। जब भी किसी किताब का बिताका आप खोलेंगे, कार्ड खोलेंगे, तो ये एरोज भी आपके सामने आएंगी। इसका मतलब असल में ये होता है कि पूरी लाइब्रेरी में, पूरे मकतबा शामिला में ये किताब जहां है उसके बाद कौन सी किताब है या उससे पहले कौन सी किताब है, आप उनको स्विच करते चले जाए। पूरे मकतबा शामिला में जो पहली किताब है वो यहाँ आप क्लिक करेंगे, देखें वो पहली किताब आ जाएगी। पूरे मकतबा शामिला में जो सबसे आखिरी किताब है उसका बिताका, उसका कार्ड खुलेगा। अगर आप लेफ्ट वाली एरो को क्लिक करेंगे, देखें ये मैंने इसको क्लिक किया है, ये बिल्कुल आखिरी किताब, तो इसकी आमतौर पर जरूरत नहीं पड़ती, इसको आप समझ लें। ठीक है जी, तो पहली चीज मैंने ये अर्ज की कि मजमूआत पे हम बात कर रहे थे, ये तमाम मजमूआत का मतलब तमाम फोल्डर्स हैं, उन फोल्डर्स में ये किताबें हैं, जिस किताब को हम क्लिक करते हैं तो उसका यहाँ बिताका भी आ जाता है और उसकी मालूमात नीचे मौजूद है जिसको हम हाइड कर सकते हैं। अच्छा, हमने बहुत से इस तरह फोल्डर अगर खोल लिए हैं, बहुत सी फोल्डर्स को इस तरह हमने खोल दिया है और अब हम चाहते हैं इसको वापस असली हालत में ले जाएं, यानी वापस हम इन तमाम किताबों को बंद करना चाहते हैं, तो नीचे देखें एक बटन है, ये जो दिया है इन्होंने आइकॉन, इसको बिल्कुल राइट के बॉटम पे कॉर्नर पर आप देखें, इसको अगर क्लिक करूंगा तो फोल्डर्स वापस अपनी असल शक्ल में आ जाएंगे। ये देखें जैसे पहले थे उसी तरह आप इसको रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने खोल लिया है, लेकिन जब दोबारा क्लिक करूंगा यहाँ तो ये तमाम फोल्डर्स अपनी जगह पर, तफासीर वाला भी वापस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम ये है कि जब भी आप कोई किताबें यहाँ खोलेंगे और वो शजरा किताबों का बहुत लंबा खुल चुका है, आप चाहते हैं उसको दोबारा से जिप कर दें इसी हालत में, तो आप यहाँ सिर्फ क्लिक करें तो अपनी असली हालत में आ जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज ये है कि ये मजमूआत के बाद दूसरा, ये दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये तस्फिया है। तस्फिया असल में सफ़ा युसफ़ी तस्फिया से है, बाब तफ़ईल है। इसका मतलब असल में फिल्टर करके देना है, वाजे और मुतय्यन करके देना है। अभी हमने देखा कि मौत्ता मालिक या सही बुखारी या सही मुस्लिम जो भी लिखें तो वो बहुत सी किताबें दिखाई देगा सॉफ्टवेयर, अगर हम मजमूआत में हैं। लेकिन तस्फिया में अगर हम आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आप देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किताबें मकतबा शामिला हमें दिखा सकता है। अब जैसे कि अगर हमने मीम को क्लिक किया, मीम हर्फ मीम को क्लिक करेंगे तो देखें तमाम किताबें जो मीम से आ रही हैं, जिनका नाम मीम से है, ला में तारीफ का एतबार नहीं है, मीम से जितनी भी किताबें हैं उनकी तादाद कितनी है इस सॉफ्टवेयर में? 1132, ये तादाद ऊपर लिखी हुई है। तो मीम से जितनी भी किताबें हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। आप कहते हैं जी मुझे वो किताबें दिखाएं जो जीम से, जिनका नाम है, तो आपने जीम को क्लिक किया तो ऊपर आ गया जी 224 किताबें हैं जिनका नाम हर्फ जीम से शुरू होता है। तो अगर आप इस तरह देखना चाहें कि आपकी किताब, आपको मालूम है कि अल जामे है मसलन नाम और जीम से शुरू हो रहा है, तो इस तरह आप आकर हर्फ को क्लिक करें, दाल को, और दाल से उस किताब को देख लें। लेकिन जाहिर है ये भी एक मुश्किल काम है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे आसान और सबसे बेहतर काम यह है कि आप नीचे लिखें जी, नीचे आप देखें ये बार है, तस्फिया पे ऊपर क्लिक किया हुआ है, तमाम आपको अल्फाबेट्स अरबी के हरूफ हिजा दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी हरफ हिजा पर क्लिक करने के बाद हमें ये मालूम है कि उस हर्फ से शुरू होने वाली तमाम किताबें और उनकी तादाद हमें मकतबा शामिला दिखाता है। ठीक है, अब लेकिन आपको चूंकि नाम पता है तो मिसाल के तौर पर आपको किताब चाहिए बिदायतुल मुज्तहिद। अगर आपको ये किताब मतलूब है तो आप देखें मैं अभी लिख रहा हूं, अभी लिखना मुकम्मल भी नहीं किया है, तो किताब अभी मैंने मुज्तहिद पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप देखें किताब हमारे सामने है। ठीक है, तो किताब का नाम अगर हम यहां लिखेंगे तो इस नाम से, اس نام سے, بدایت المجتہد کے نام سے ایک ہی کتاب, ٹھیک ہے, فوری آ جائے گی. اس میں یہ نہیں کہ بہت زیادہ آپ کو کلک کرنے پڑیں گے. اگر دیکھیں میں مجتہد کو مٹا دوں, صرف بدایا ہے, مجتہد کو میں نے مٹا دیا ہے, صرف بدایا لکھا ہے, تو آپ دیکھیں کہ جس جس کتاب کے نام میں کہیں بھی بدایا آئے گا, پورے مکتبہ شاملہ کی وہ چند کتابیں دیکھیں آپ کے سامنے, ٹھیک ہے, وہ 13 کتابیں ہیں جن کے عنوانات, جن کتابوں کے ٹائٹل میں بدایا لکھا ہوا موجود ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے. مثال کے طور پر میں یہیں لکھ لیتا ہوں صحیح البخاری, ٹھیک ہے جی. تو آپ دیکھیں گے جہاں جہاں صحیح البخاری آیا, چاہے شرح میں آیا چاہے اصل کتاب میں, وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. یہ دیکھیں ان سب میں صحیح البخاری کا الفاظ موجود ہے, اور یہ صرف صحیح البخاری ہے. اور یہاں بھی جیسے ہی میں کلک کروں گا تو نیچے معلومات کھل گئی ہیں. اس معلومات کو پھر میں اسی بٹن سے بند بھی کر سکتا ہوں, دوبارہ کھول بھی سکتا ہوں, ٹھیک ہے. اور اسی صحیح بخاری کا دیکھیں بتا کا کھولنا ہے مجھے, برابر میں وہی آئیکن موجود ہے, میں نے بتا کا کھول لیا ہے. اور بتا کا میں آپ دیکھیں اسی چھاپے کے بارے میں جو کہ شامل ہے مکتبہ شاملہ میں, یہ ساری معلومات ہیں, کتاب کی مؤلف کی طرف نسبت اور اس کے نام اور کیسے چھپی, یہ ساری معلومات ہیں. دیکھیں انل کتاب اور انل مؤلف, مؤلف کے بارے میں بھی معلومات اسی بتاکے میں موجود ہے. جب بھی آپ کے سامنے بتاکت الکتاب آئے گا تو ان تینوں میں سے بتاکت الکتاب کی معلومات آپ کو جہاں جہاں شاملہ نے فراہم کیے وہ آپ کو مل جائیں گی. یہ دیکھیں بائیں طرف جو اوپر لاک کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں, اب ذرا دیکھیں دائیں طرف کیا ہے. دائیں طرف ایک سرخ نشان آ گیا ہے پی ڈی ایف فائل کا. جہاں جہاں آپ کو یہ پی ڈی ایف کا آئیکن دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی کتاب, یہی ایڈیشن مکتبہ شاملہ نے اپنی ویب سائٹ پر اس کی پی ڈی ایف فائل بھی رکھی ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں, اور اسی شاملہ میں اسی کتاب کے ساتھ کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں جب چاہیں آپ پیرالل دونوں کو کھول لیں, ٹھیک ہے. تو جو جس کی پی ڈی ایف اویلیبل ہے شاملہ ویب سائٹ پر, تو آپ دیکھیں اس کتاب کے ساتھ یہ ریڈ آئیکن آ جائے گا, اور اگر نہیں ہے پی ڈی ایف تو یہ ریڈ آئیکن نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں نیچے ایک نئی چیز آ گئی ہے, ذرا اس کو دیکھیں. بخاری کا جب ہم نے کارڈ کھولا ہے صحیح بخاری کا, تو دیکھیں رائٹ کے نیچے, رائٹ کے کارنر پر عرض کامل کا بٹن ہے. عرض کامل کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بخاری کی اس وقت تو ہم نے کتاب نہیں کھولی, ہم صرف اس کی کارڈ, اس کے مؤلف, اس کتاب کے بارے میں کچھ معلومات لے رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایف ہے یا نہیں ہے. اب یہ جو عرض کامل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو پوری طرح شاملہ میں جس طرح کتاب کھلتی ہے پوری طرح ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے. تو اگر ہم اس کو عرض کامل دبائیں گے, اس سافٹ ویئر کو سیکھتے ہوئے دسیوں جگہ پر آپ کو عرض کامل کا یہی بٹن, اس آئیکن کو ذرا پہچان لیں, یہ کتاب کھلی ہوئی دکھائی ہے اس میں, تو یہی آئیکن بار بار آئے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں بھی کوئی کتاب ابھی ہم نے کھولی نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی چیز ہے یا تخریج کر دی ہے حدیث کی, تو آپ اس کتاب کو آپ پوری طرح کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں اس کی تمام فہرست اور ابواب کے ساتھ, تو اس بٹن کو ہم نے دبانا ہے. تو ایک ہم پریکٹس کرتے ہیں عرض کامل کا بٹن یا یہ آئیکن, اس کو کلک کرتا ہوں میں, پھر دیکھیں کہ صحیح بخاری کھلتی ہے اور کیسے کھلتی ہے. یہ دیکھیں میں نے عرض کامل کو کلک کیا ہے, تو عرض کامل کا یہ مطلب ہے جی کہ بخاری کا ہم نے صرف صحیح بخاری کا نام دیا, اس کا بتاکا دیکھا, مؤلف کے بارے میں معلومات لے لی, پی ڈی ایف کے بارے میں دیکھ لیا, لاک دیکھا کہ بھئی یہ مکتبہ شاملہ کی آفیشیل کتاب ہے, اب ہم نے پوری طرح کھولا ہے جی, یہ اس کو کہتے ہیں عرض کامل, ٹھیک ہے. فل ویو آپ کو اب دے رہا ہے یہ مکتبہ شاملہ, کیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دائیں طرف پوری کتاب کے ابواب کی فہرست موجود ہے اور یہ کتاب کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ عرض کامل کے حوالے سے تھا. اب ہم پھر واپس پیچھے چلتے ہیں جہاں سے ہم, جہاں ہماری گفتگو جاری تھی جی. تصفیہ کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ الفابیٹیکل آرڈر سے بھی تمام کتابیں اور ان کی تعداد معلوم کی جا سکتی ہیں, اور اسی طرح نیچے کتاب کا نام لکھیں گے तो बिल्कुल बहुत कम वक्त में सबसे आसान तरीका यही है कि किताब का अगर नाम मालूम है तो यहाँ आप आकर लिख लें, सही मुस्लिम लिखें, मुअत्ता मालिक लिखें, मुस्नद तयालसी लिखें, या सिर्फ जो भी आपको मतलब पूरा टाइटल नहीं भी याद, जो जो याद है वो आप अल्फाज लिखेंगे, वो किताब आपके सामने आ जाएगी। तस्फिया की वजाहत में कर चुका हूँ। मजमूआत में ये था कि सारे फोल्डर्स थे, आप नाम लिख कर इधर उसे उधर से तलाश कर रहे थे, तमाम मजमूआत में जाकर भी देख सकते थे। तस्फिया में ये कि फिल्टर करके, वाजे करके, मुतय्यन करके और हरूफ की हरूफ तहज्जी के लिहाज से आपको किताबें फराम कर दी जाती हैं। ये इसमें तलाश करना किसी किताब को ज्यादा आसान है। तीसरी और आखिरी चीज, इस बॉक्स के अंदर आप ऊपर देखें लेफ्ट पर साबिक लिखा है, और साबिक से क्या मुराद है और इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा आप देखें कि कुछ किताबें आई हैं सामने। इसका मतलब यह है कि जिन किताबों को अभी रिसेंटली हमने यूज किया है, उसको खोला है, अर्ज कामिल पे जाके उसको खोल लिया है, अभी या कल या परसों या एक हफ्ता पहले जो किताबें हमने पहले पढ़ी हैं, खोली हैं, उन किताबों का रिकॉर्ड अपने पास शामिल है, खुद ही रखता है ऑटोमेटिकली। तो जो किताब हम पहले पढ़ चुके हैं उसको तलाश करने की जरूरत नहीं है। आप इस बॉक्स को जैसे ही खोलेंगे, आपने एक हफ्ते पहले किताब खोली थी, आपके इल्म में है कि ये किताब यहाँ मौजूद होगी, तो आप बजाय मजमूआत में जाने के, तस्फिया में जाने के, आप साबिक में जाएं और देखें इमाम शाफई की अल-उम जो है वो पहले से खुल आपके सामने है, जामे मामर भी है, इमाम शाफई की इख्तलाफुल हदीस भी है। ये सारी किताबें पहले चूंकि इस्तेमाल में आ चुकी है, तो अब इसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगी किताब। ठीक है जी, ये वाजे है। तो ये साबिक में ये चीज है। अब इसमें जो पहलू है, ये देखें नीचे राइट के कॉर्नर पर नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 50 या 100 किताबों का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, 200 किताबों का जो पहले आप खोल चुके हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ फहरिस्त लंबी बनती रहे लेकिन खुली हुई किताबें मुझे बार बार तलाश ना करनी पड़े, तो इसकी आप लिमिट बढ़ा दें। देखिए इस वक्त 54 लिखा है, अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर 100 पर ले जाता हूं तो इसका मतलब ये कि साबिक किताबों में 100 तक की भी ये महफूज करता रहेगा, 100 के बाद जाहिर है फिर ये महफूज नहीं करेगा। तो जिन किताबों को आप चाहते हैं कि अनलिमिटेड रहे तो आप जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो किताबें साबिक में मौजूद हैं, यानी यहां पहले से मौजूद है कि मैं मुअत्ता मालिक भी पढ़ चुका हूं, किताबुल उम भी पढ़ चुका हूं और तफसीर मुजाहिद भी मैंने खोली है, नासिफ वल मंसूफ कासिम इब्न सलाम की भी मैंने खोली है, अब मैं चाहता हूं कि ये सारा रिकॉर्ड इसको क्लियर कर दिया जाए, तो देखें कि यहाँ ये नीचे बटन है आपके सामने, ये जितने आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारा रिकॉर्ड आप क्लियर कर लेंगे, ये साफ हो जाएंगी, जब चाहें इसको आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी के जरिए से आप एक एक भी कर सकते हैं, एक को सेलेक्ट करें और क्लियर कर दें, ठीक है, दो को सेलेक्ट करें क्लियर करें, लेकिन अगर सबको करना है तो ये ब्रश जो बना है वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं अल फितन को क्लिक किया है और इसको मैंने यहां से रिमूव कर रहा हूं, देखें ये क्रॉस का निशान है, हज़फुल कुतुबिल मुहद्ददा मिनल काइमा, इस पूरी लिस्ट में से जो सेलेक्टेड किताब है उसको डिलीट कर दिया जाए, तो मैं क्लिक कर रहा हूं, देखिए अल फितन गायब हो गई है। ठीक है, और अगर मैं इस येलो वाले ब्रश को क्लिक करूंगा तो तमाम रिकॉर्ड साफ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वही है कि जिस किताब को क्लिक करेंगे, बिताकत नहीं चाहिए तो इसको बंद कर दें, चाहिए तो इसको खोल दें, और वही बिताकतुल किताब है। तो देखें ये सारी चीजें हमने सीख ली है कि जो यहां से हम चले थे कि मेन इस पर आप इंटरफेस पर या बैकग्राउंड पिक्चर पर शामिला की क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें मजमूआत भी हैं, तमाम फोल्डर्स हैं, और तस्फिया के जरिए हरूफ हिजाज़ से लिख कर भी तलाश कर सकते हैं, और पुरानी किताबें जो पहले मुताला हुई हैं, हो चुकी हुई हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ये जहाँ तक ये एक आइकॉन जो दिखाई दे रहा है, ये शामिला की तरफ से इस वक्त डिसेबल्ड है, ये आजकल काम नहीं कर रहा। इसका मकसद वैसे ये था कि जो भी वर्जन आपके पास है, अगर ये आप इंटरनेट पर हैं तो تو آپ کو اس سہولت سے اس کی ساری رپورٹس بنا کر وہ دے دیتا ہے کہ حروف ہجا کے لحاظ سے آپ کی کتابوں کی رپورٹ دے گا یا کون کون سے فولڈر کی آپ کے پاس کتابیں ہیں اس کی ہے آپ کو پوری فہرست دے دے گا. تو اس طرح کی فہرستیں بنا کر دینے کی پہلے سہولت ہوا کرتی تھی, اس وقت یہ فیچر اس کا کام نہیں کر رہا ہے. اس طرح دو چار اور بھی چیزیں میں آگے بتاؤں گا کہ جو اس وقت ڈس ایبلڈ ہیں وہ اس وقت ورکنگ میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کو ہم نے سمجھ لیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو باقی جو چیزیں ہیں اس میں کیا ہے. جی یہاں کلک کرنے کا طریقہ آ گیا ہے اور پہلے آئیکن کو بھی ہم نے سیکھ لیا ہے, یہ بھی سیم ہے. یہ دونوں طریقے کتاب تک رسائی کے طریقے تھے. اب ہم کہتے ہیں جی کوئی کتاب, مثال کے طور پر متون الحدیث میں ہم گئے, یہی موطا امام مالک مثال کے طور پر ڈبل کلک کیا ہم نے, ڈبل کلک کیا. بلکہ ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ اسی جگہ پر آپ دیکھیں کہ یہ جتنی بھی کتابیں آپ کے سامنے ہیں اور جتنے بھی فولڈر آپ کے سامنے ہیں, ان فولڈرز میں سے جس کتاب پر آپ کلک کریں گے, مثال کے طور پر اس کتاب کو آپ نے کلک کیا, نیچے آپ کو معلومات مل گئی ہیں, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کا نام جا کر لکھنا نہ پڑے, اسی کتاب کا نام آپ کو چاہیے اور جا کر ورڈ فائل میں پیسٹ کرنا ہے, تو آپ اس کو رائٹ کلک کر دیں. بس رائٹ کلک کریں اور پہلا جو ہے نسخ المحدد یعنی جو سلیکٹڈ بک ہے اس کو کاپی کرنا ہے, یعنی اس ٹائٹل کو کاپی کرنا ہے. آپ اس کو نسخ المحدد پر کلک کریں اور اپنی ورڈ فائل میں جا کر جب پیسٹ کریں گے تو یہ پورا نام, اس کتاب کا نام یا اس کتاب کا نام, جس کتاب کا بھی چاہیں, وہ وہاں جا کر پیسٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ چاہتے ہیں کہ جی یہ علوم القرآن ہے, یہ علوم القرآن کا فولڈر ہے, اس فولڈر کی ساری کتابیں جتنے بھی نام ہیں چاہے وہ 500 کتابیں ہیں, مجھے ان تمام ٹائٹلز کے نام جا کر پیسٹ کرنے ہیں, میں اس کو ٹائپ نہیں کر سکتا. تو آپ رائٹ کلک کریں علوم القرآن پر اور نسخ المجموعات کلیہ. ٹھیک ہے, تو یہ پورے مجموعے کی یعنی پورے فولڈر کی تمام کتابوں کے جو نام ہیں بالترتیب جیسے وہاں ہیں آپ کی ورڈ فائل میں جا کر, جیسے ہی آپ کنٹرول وی دبائیں گے تو وہاں جا کر یہ پیسٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت ہی قیمتی فیچر ہے جس کو آپ سمجھ لیں کہ پہلے سے آپ پہلا جو آپشن ہے اس میں آپ صرف کتاب کا سلیکٹڈ کتاب کا نام جا کر پیسٹ کریں گے, اور دوسرے پر آپ نے جیسے ہی یہ کاپی دبائی, یہ کاپی کا اصل میں وہ ہے بٹن ہے, تو کاپی دبایا تو اس فولڈر کی ساری کتابیں, مثلا میں اس کتاب پر مثال کے طور پر الناسخ والمنسوخ پر کلک کر رہا ہوں اور رائٹ کلک کر کے میں نے یہ نسخ المجموعہ کلیہ اگر کلک کیا ہے تو اس فولڈر کی ساری کتابوں کے نام اس فائل میں جا کر میں بآسانی ایک ہی کلک پر پیسٹ کر سکتا ہوں. یہ ہو گیا. اچھا, اس کے بعد وہی ہے بطاقت الکتاب, یعنی ہم پہلے سیکھ چکے ہیں, عرض کامل پوری کتاب کھول کر دے دے گا. غرفت التحکم, یہ اصل میں کنٹرول پینل ہے, اس کتاب کے حوالے سے بہت سی چیزیں سیٹنگز آپ تبدیل کر سکتے ہیں, یہ آگے ہم جا کے ویسے بھی پڑھیں گے, اس وقت یہ موقع نہیں ہے اس کو سکھانے کا, اس کو آپ چھوڑ دیں. اسی طرح اور چیزیں ہیں جی آخر میں, بحث فی الکتاب یعنی کتاب کے اندر چیزیں آپ نے کچھ تلاش کرنی ہے وہ بھی آگے سیکھیں گے, یہ ساری چیزیں آگے آ رہی ہیں. آخری آپشن اس میں یہ ہے کہ اس کتاب کو, یہی الناسخ والمنسوخ کو آپ شاملہ سے باہر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس تصدیق کا آپشن ہے, یہ آگے ہم سیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح یہی کتاب آفیشیل ویب سائٹ پر جہاں اسی فائل میں موجود ہے, یہ اس کا گویا کہ لنک ہے, ڈائریکٹ یہاں سے کلک کریں گے تو موقع البرنامج یعنی اس سافٹ ویئر کی جو آفیشیل ویب سائٹ پر جہاں یہ کتاب موجود ہے وہاں آپ کو لے جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا جی مکمل. اب میں آ رہا ہوں اس پر کہ کوئی کتاب ہم کھول لیتے ہیں, مثال کے طور پر تفسیر تبری ہم نے کھولی ہے, تفسیر تبری ہم نے کھول لی ہے, تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں, یہ عرض کامل ہے. کیوں کہ آپ کے سامنے کتاب پوری طرح کھلی ہوئی ہے اور آپ کے سامنے اس کے ابواب بھی آ رہے ہیں, فہرست بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آج کے سیشن میں چونکہ نماز کا اور وہ جو وقفہ ہوا ہے تھوڑی تاخیر ہوئی تھی تو سوال جواب کا سیشن بھی ذرا سا تاخیر سے شروع کریں گے, آخری 15 منٹ انشاءاللہ سوال جواب کے ہم رکھیں گے. तो इसको मैं इस वक्त जारी रखता हूँ। अब आप देखें कि ये जो फहरिस्त है, दाएं तरफ आपके सामने तमाम अबवाब आ रहे हैं तफसीर तबरी के, ठीक है। ये किताब पूरी तरह अर्ज कामिल में खुली हुई है, देखें ये अर्ज कामिल का बटन भी है, लेकिन ये चूंकि अभी किताब खुली है तो इस वक्त इसका कोई काम नहीं। इसके बराबर में जो तीसरा आइकॉन है ये क्या है, यानी ये इसलिए है कि जो दाएं तरफ हमें फहरिस्त दिखाई दे रही है, अबवाब दिखाई दे रहे हैं किताब के, इसको अगर आप चाहते हैं कि छुपा दें, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप मतलूबा पेज तक, आयत तक, तफसीर तक पहुंच चुके हैं, अब आप चाहते हैं कि ये जो फहरिस्त है ना इसको बंद कर दिया जाए, मैं फुल व्यू में, फुल स्क्रीन में तफसीर तबरी को पढ़ना चाहता हूं, तो आप इसको क्लिक कर लें। इजहार उशजरा या इख्फा उशजरा का मतलब यह है फहरिस्त अबवाब आप बंद कर रहे हैं, ये देखें बंद हो गई। अच्छा, दोबारा खोलना चाहते हैं, किसी और बाब में जाना है, दोबारा क्लिक कर दें तो ये वो तमाम अबवाब आपके सामने दोबारा आ जाएंगे। तो तीसरा आइकॉन हम समझ रहे हैं, पहला इख्तियार किताब था, दूसरा अर्ज कामिल था, और तीसरा है जी इजहार शजरा या इख्फा शजरा। इस वक्त शजरा यानी फहरिस्त अबवाब हमारे सामने है तो इख्फा हो जाएगा, ये देखें ये छुप गया है, और दोबारा क्लिक करूंगा तो तमाम अबवाब, तमाम हेडिंग्स, तमाम उनवानात किताब के तफसीर के हमारे सामने फिर आ गए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है जी, चौथा आइकॉन। चौथा जो आइकॉन है इसको अगर हम क्लिक करते हैं, आप देखें इस पर नाम क्या आ रहा है, जैसे ही करीब में आप एरो ले जाएंगे तो इजहार उत्तालीक या इख्फा उत्तालीक का उन्वान लिखा हुआ आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मफहूम यह है कि आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना इस किताब पर, आप जिस सफ़े का मुताला कर रहे हैं अपने जाती नोट्स महफूज करना चाहते हैं, किसी भी सफ़े पर अपने जाती नोट्स लिखना चाहते हैं, तो आप इस चौथे आइकॉन को, इजहार उत्तालीक को क्लिक करें। आप देखें इससे फर्क क्या पड़ता है, देखें मैंने क्लिक किया है तो नीचे एक हाशिया या एक बॉक्स खुल गया है जिसमें नोट्स लिखे जा सकते हैं, यह आपको दिखाई दे रहा होगा बॉक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने क्लिक किया है, दोबारा क्लिक करूंगा तो बंद हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि कोई नोट्स लिखूं इसी सफे पर, मैं इसको क्लिक करूंगा और यहां इसी बॉक्स में मैं जो चाहूं नोट्स अपने लिख सकता हूं। जैसे ही मैं नोट लिखूंगा, कुछ भी लिखें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए या आइंदा मुताले के लिए, ठीक है जी। तो आपने कुछ भी लिखा, नोट्स उसी सफ़े पर आपके अब आपने महफूज करने हैं। तो क्या है, जो कुछ लिखा है यहाँ आए नीचे, जो आप देखें सेव का एक आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है नीचे, इसको जैसे ही सेव दबाएंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ इस पेज पर ये सेव हो गया, ठीक है। अगर मैं दोबारा भी आता हूँ इसी जगह पर किताब को, अगर मुझे इस बंद करना है, वापस आऊंगा इसी पेज पर, ये नोट्स मौजूद रहेंगे, ठीक है, चाहे इस पे जो भी कुछ लिखा है मैंने। ये जैसे मैं किताब को देखें, जब भी कोई किताब खुली है ऊपर जो राइट पे क्रॉस का निशान है इसको आपने क्लिक कभी नहीं करना है, सिर्फ जब मकतबा शामिला काम करके बंद करना है तो ऊपर वाले राइट कॉर्नर के क्रॉस को क्लिक करेंगे, उसके बाद जो नीचे सेकंड क्रॉस है ना असल में उसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने का मतलब ये है कि जो किताब इस वक्त आपने खोल रखी है या जो फीचर खोल रखा है वो बंद होगा, ठीक है। मैं उसको क्लिक कर रहा हूं, तफसीर तबरी बंद हो गई है, मैं दोबारा जा रहा हूं तफसीर तबरी पे, दोबारा डबल क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा वो किताब, चूंकि पहले ही सफे पर मैंने अपने कुछ नोट्स लिखे थे और उसको यहां से सेव भी किया था, आप देखें वो नोट यहां मौजूद है, ठीक है, ये नोट मौजूद है। अगर मैं चाहूं कि इस नोट को मिटा दूं तो ये देखें इसी सेव के बराबर में क्रॉस का एक निशान है, इसका मतलब क्या है कि जो नोट आपने लिखा है इस सफ़े पर वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो सॉफ्टवेयर हमसे पूछ रहा है कि आप चाहते हैं कि इस नोट को खत्म कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। आप यस करेंगे, नोट चला गया जी, नोट रिमूव हो गया है। अब आप देखें, इसको बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, दोबारा जो चाहे नोट आप यहां लिखें। ठीक है जी, नोट लिखने का, सेव करने का और साथ ही इसी पेज पर रहते हुए इसको मिटाने का तरीका भी आपके सामने आ गया है। ये देखें, आपके सामने मैंने ये नोट लिखा है दूसरा, फिर इसको यहां से मैंने डिलीट कर रहा हूं और इसको यस किया और ये नोट डिलीट हो गया। अगर किसी भी किताब पर मैंने मुख्तलिफ सफात पर कुछ नोट्स लिखे हैं, मुख्तलिफ जिल्दों में नोट्स लिखे हैं, अब मैं चाहता हूं उस किताब में से अपने तमाम नोट्स मिटा दूं, तो फिर क्या करना होता है जी, नोट्स जैसे ही हम लिखते हैं उसके बाद सेव कर लेते हैं, तो ये जो तीसरा बटन है, तीसरा जो आपको इरेजर दिखाई दे रहा है, इस इरेजर पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो वो ये पूछ रहा है, हल तुरीदु बिताकीद हذف جميع تعليقات هذا الكتاب, इस किताब में जितने भी नोट्स आपने लिखे हैं, जिन सफात पर भी लिखे हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि सबको डिलीट कर दिया जाए? तो आप जैसे यस करेंगे, इस किताब में आपने जितने भी नोट्स अपने जाती लिखे हैं वो सब के सब रिमूव हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बात वाजे हो गई है। इसको जरा सा दोबारा देख लें, ये चौथा आइकॉन है जिसको हम सीख रहे हैं, यहां से हम आए हैं। तालीक का मतलब नोट है, नोट, नोट लिखना। ठीक है, तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जिस सफ़े पर खड़े हैं नोट बॉक्स हाशिए में हमें दिखाई देगा, उसमें हम लिखेंगे भी और यहाँ से सेव भी कर लेंगे, और जब चाहें उसी सफ़े को खोलकर ये सेकंड वाले क्रॉस के बटन से उसको रिमूव भी करेंगे और किसी भी किताब में लिखे हुए तमाम नोट्स को रिमूव करने के लिए इरेजर वाले इस तीसरे आइकॉन को क्लिक करेंगे और आगे जाकर यस करेंगे तो तमाम नोट्स साफ हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको मैं बंद कर रहा हूं। एक और चीज देखें कि ये जो तफसीर तबरी आपके सामने है, इसमें देखें नीचे नंबर आ रहे हैं, नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि पहली जिल्द है। पहला जो बॉक्स है जिसमें एक लिखा है, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, पहला जुज है। ठीक है, अल जुज उल अव्वल लिल किताब। अच्छा, दूसरा जो नंबर पांच है, ये नंबर पांच इस बुक में, इस छापी हुई बुक में, ये इस सफ़े का नंबर है जो सफ़ा खुला हुआ है। ठीक है जी, अब आप चाहते हैं इस सफ़े से आगे बढ़ना है, सेकंड पेज पे जाना है, तो मतलब है शामिला में एमएस वर्ड की तरह नहीं है कि आप स्क्रॉल करते चले जाएं, या पीडीएफ की तरह नहीं है, बल्कि आप ऊपर देखें चार एरो कीज दिखाई दे रही ब्लैक में। आप अगर एक सफ़ा आगे जाना चाहते हैं तो ये देखें, दरमियान में जो दोनों कीज है राइट एंड लेफ्ट, एक सफा आगे जाना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली की पर ताली लिखा है नेक्स्ट, तो एक आप क्लिक करेंगे तो ये क्या है, ये आगे बढ़ेगा, छठे पेज पर चला गया, पांच के बजाय नीचे छह आ गया है। एक और पेज क्लिक करें, देखिए एक एक करके पेज आप मुताला करते हुए एक एक पेज आपको आगे जाना है, और अगर पीछे जाना है तो सिंगल सिंगल क्लिक पर आप फिर वापस चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, जो बराबर में राइट पर और लेफ्ट पर ये एरोज हैं, इसका क्या मतलब है, ये किस मकसद से दी गई हैं? इसको समझ लें कि अगर राइट वाली एरो, फर्स्ट राइट वाली एरो अगर क्लिक करता हूं तो इस आइकॉन से मैं वही बिगिनिंग ऑफ द बुक पर चला जाऊंगा। ये देखें, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, इस वक्त दसवां पेज है, आप देखें जैसे ही क्लिक करूंगा किताब के आगाज पर, पहले सफ़े पर, यानी जहां से इसमें दिया हुआ है उस सफ़े पर पहुंच गया। अगर मैंने किताब का बिल्कुल आखिरी सफ़े पर जाना है तो जो चौथी एरो है, लेफ्ट वाली जो एरो की है, आप देखें इसको मैं क्लिक करूंगा, बिल्कुल किताब के आखिर में कैसे चला गया हूं, आप नीचे देखें 24वीं जिल्द है जी, यानी पहले मैं पहली जिल्द पर था, अब क्या लिखा है 24वीं जिल्द में 711 नंबर सफ़े पर, यही किताब का आखिरी सफ़ा है, मैं वहां पहुंच गया। ठीक है जी, किताब के आगाज में जाना है तो राइट वाली एरो, पूरे शामिला में यही कायदा है, जो किताब आपने खोली है अगर आपके अव्वल किताब में जाना है तो राइट, और बिल्कुल आखिरी सफ़े पे जाना है तो बाएं जानिब वाली जो आखिरी एरो की है इसको क्लिक करें, बिल्कुल आखिर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक एक सफ़ा आगे और पीछे जाना है तो दरमियान वाली एरो की इसको यूज करते चले जाएं, यूज करते चले जाएं। एक और चीज, नीचे जब नंबर लिखे हैं आप देखें, आपको अगर सफा नंबर और जिल्द नंबर मालूम है और आप चाहते हैं बराए रास्त आप वहां चले जाएं, तो आप देखें मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मुझे पांचवी जिल्द में सफा नंबर 50 पे जाना है, तो नीचे इस बॉक्स को देखें कि मैं 5 लिखता हूं, ठीक है जी, वॉल्यूम की जगह पे 1 की जगह पे 5 लिखा है और 9 की जगह पर मैंने 50 लिखा है, 50। और फिर क्या करना है, या इंटर करना है और या ये बटन है जी, इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक किया पांचवी जिल्द के सफा नंबर 50 तफसीर तबरी में मैं यहां पहुंच गया। अब मैं कहता हूं दसवीं जिल्द में मुझे सफा नंबर 300 पे जाना है, मैंने दसवीं जिल्द भी लिखा है, अब सफा 300 भी लिखा है, इंटर भी कर सकता हूं और इसको क्लिक भी कर सकता हूं। इधर क्लिक किया दसवीं जिल्द में सफा नंबर 300 पर तफसीर तबरी में मैं पहुंच चुका हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो एक अगला बॉक्स है, ये खाली क्यों है? ये खाली इसलिए है कि ये किताब तफसीर की किताब है। अगर हदीस की किताब होती या रिजाल की किताब होती जिसमें रावी का नंबर है या हदीस का नंबर है, तो इस जगह पर वो नंबर होता है, इस जगह पर वो नंबर होगा। आगे हम वो चीजें भी सीख लेंगे कि आपको हदीस का नंबर मालूम है, आपने मौत्ता इमाम मालिक खोली और यहाँ इस बॉक्स में आके हदीस का नंबर लिखा और यहाँ क्लिक किया, डायरेक्ट चले गए। आपको हाफिज इब्ने हजर की किताब तकरीब तहजीब में रावी का नंबर मालूम है और तकरीब तहजीब आपने खोल ली है या तहजीब उल कमाल मिज़ी की खोल ली है, तो आप इसी बॉक्स में आए और उस रावी का नंबर जो आपको मालूम है किताब में वो लिखें और इसको क्लिक करें, वो बराए रास्त आपको तकरीब में या तहजीब में उसी रावी पर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। उसको सर्च करने की फिर जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ नंबर लिखकर आप वहां पहुंच सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आप ये देखें कि चूंकि ये तफसीर खुली हुई है तो तफसीर में चूंकि ऊपर आयात भी होती है, आप देखें ऊपर आयात है और नीचे इमाम तबरी का की शरो वजाहत है, ठीक है जी। आप कहते हैं कि मुझे इस वक्त आयात दरकार नहीं है, मैं मतलूबा पेज पर मौजूद हूं और मुझे सिर्फ इमाम तबरी की तफसीर ही देखनी है, तो नीचे आप देखें एक बटन है इख्फा उल आयात, एक चेक बॉक्स है जिसको अगर मैं चेक लगाऊंगा, इख्फा उल आयात का मतलब है कि आयात हाइड हो जाएंगी। आप देखें मैं क्या कर रहा हूं, यहां गौर से देखिएगा कि इख्फा उल आयात पर मैं चेक लगा रहा हूं, जैसे ही मैंने चेक लगाया आयात ऊपर से गायब हो गई है, अब हम आयात को नहीं देख सकते, और दोबारा से अगर खोलना है तो दोबारा खोल भी सकता हूं, जैसे ही अनचेक करूंगा आयात आ जाएंगी। अगर मैंने इख्फा उल आयात को चेक लगाया है तो चेक लगाने के बाद आप देखें मैं जैसे एक एक सफा आगे बढ़ूंगा तो सिर्फ तफसीर दिखाई देगी, ये देखें सिर्फ तफसीर है जी। आयात जो ऊपर लिखी होती है तफसीर में, जो मतन होता है, कुरानी नुसूस होती है जिनकी तफसीर की जा रही है, उनको हमने गायब कर दिया है। दोबारा मैं इख्फा उल आयात को अनचेक करूंगा, देखें तो उसके बाद फिर आयात आ गई है। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूं आयतें ऊपर लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, उन्हीं आयतों की तफसीर चल रही है और नीचे तफसीर है ऊपर आयात है, ठीक है जी। ये बात भी वाजे हो गई है, ये देखें आयात भी है। अब इसकी आप आखिरी चीज देखें इख्फा उत तश्कील, ये नीचे एक ऑप्शन है। इसका क्या मतलब है कि इस तफसीर को लिखते हुए या मतन में जो आपको एराब या तश्कील दिखाई दे रही है हरूफ पर, इस तश्कील को आप मिटाना चाहते हैं, बगैर तश्कील के इबारत चाहिए आप, जबर जेर पेश शद कोई शद्दा कोई चीज नहीं चाहिए, तो इस इख्फा उत तश्कील पे मैं चेक लगाऊंगा, आप देखें आयात की जितनी तश्कील थी वो भी खत्म हो गई है, कोई एराब हरकात, ठीक है जी। ये इख्फा उल आयात के चेक लगाने से हमें ये पता चला कि जैसे ही मैं उसको चेक लगाता हूं तो किताब में से तमाम एराब और तश्कील खत्म हो जाती है, और जैसे ही अनचेक करूंगा तो तमाम जबर जेर पेश के साथ में किताब को देख सकता हूं। तो ये चंद आज चीजें थी जिनको हमने सीखा है जी, ये किताब को सेलेक्ट करना और पूरी किताब को खोलना, अब्वाब को साइड से बंद करना खोलना اور کتاب پر تالیخ لکھنا، اس کو مٹانا، یہ سارے آپشنز آج ہم نے دیکھ لیے ہیں اور بہت سی تفصیلات اور بھی دیکھی ہیں. انشاءاللہ اس پر کل پھر گفتگو یہیں سے جاری رہے گی اور آگے ہم بڑھیں گے اور اہم چیزیں اور بھی ہیں جن کو ہم بالترتیب انشاءاللہ سیکھتے ہوئے چلے جائیں گے. اس وقت جو اب باقی وقت ہے جو کہ ہم نے محدود کیا تھا اس وقفے کی وجہ سے نماز کے اور میری تاخیر کی وجہ سے، جس پر میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں، اب انشاءاللہ سوالات کے لیے میں حاضر ہوں. آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں آج کے سیشن سے متعلق.
جی، رضوان علی صاحب کا سوال ہے. رضوان صاحب، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے تو سوال کر سکتے ہیں.
جی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب رضوان.
عامر بھائی، سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹائپ کر کے دو لنکس بھیجے تھے کہ جہاں سے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں چیٹ کے اندر، تو مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ورژن ہم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں وہاں سے، تو یہ وہی پرانا والا ورژن ہے جو ابھی اپ ڈیٹڈ نہیں ہوا ہے؟ اور اگر کر سکتے ہیں تو اس کے کتنی جی بی وہاں سے ہم اس کو ٹوٹلی ڈاؤن لوڈ کریں؟ کیونکہ مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ صرف سافٹ ویئر بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے اور اس میں بکس ہم اپنے حساب سے پھر ایڈ کر سکتے ہیں. اور ایک سر چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس سامنے ساری کتابیں آ رہی ہیں تو ان کے سامنے بریکٹ کے اندر کچھ نمبرنگ ہوئی ہوئی ہے 224، یہ کیا سنی ہجری ہے جس کے اندر لکھی گئی ہیں یا یہ کوئی اور چیز ہے؟
جی، میں عرض کرتا ہوں. جی، فولڈرز جو ہم کھولتے ہیں، جی، یہ ہمارے سامنے ہیں. دیکھیں، ان مجموعات میں جہاں جہاں آپ کو یہ دکھائی دے رہا ہے بریکٹ میں، اس کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ مصنف کی جو سن وفات ہے، وفات کی جو سال ہے، وہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کو بریکٹ میں یہ نمبرنگ دکھائی دے رہی ہے، اصل میں یہ گویا کہ آپ دیکھیں امام مالک کی جو تاریخ وفات ہے وہ 179 ہجری کی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اس کو سمجھ لیں. جہاں تک میں نے دو لنک سب پارٹیسپینٹس کو بھیجے ہیں چیٹ باکس میں، اس کا مطلب آپ سمجھ لیں. جی، ایک اس میں ہے باحثین.com کی ویب سائٹ کا ہے ورژن، اس میں جو ہے یوں سمجھے کہ 4 GB کا وہ آپ کو فائل ہے جو اپنے ہاں ڈاؤن لوڈ کرنی ہے. وہ زپ فائل ہوگی، اس کو آپ ان زپ کریں اور جہاں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کو رکھیں، سی میں، ڈی میں، جس ڈرائیو میں چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں. ان زپ کرنے کے بعد جہاں آپ اس کو اسی نام سے جیسے کہ وہاں ہے رکھیں، اور اگر سیٹ اپ کی فائل وہاں موجود ہے تو اس کا سیٹ اپ چلائیں، اور اس کے بعد آپ اس کو مکتبہ شاملہ کے آئیکون کو کلک کریں، ڈبل کلک کریں گے یا آٹومیٹیکلی بھی وہ رن کر جائے گا. اگر ڈیسک ٹاپ پہ آئیکن نہیں آیا تو وہیں سے آپ اسی فولڈر میں جا کر جو اس کا آئیکون ہے اس پر رائٹ کلک کر کے سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ جو باحثین.com والا 4 GB کا ہے، یہ اسٹینڈرڈ ورژن ہی ہے. ٹھیک ہے، اس وقت جو چوتھا ورژن چل رہا ہے اس پر تو ہم بات نہیں کر رہے، وہ ابھی لانچ کیا ہے، وہ اس میں بہت سے فیچر نہیں ہے، وہ کافی ناقص بھی ہے. تو اسٹینڈرڈ ورژن ہی ہے، لیکن اس میں کتابیں 6000 سم تھنگ ہیں، یعنی جس کو بہت زیادہ وسیع مکتبہ شاملہ کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے یہ کافی ہے. 4 GB والی یہ فائل جب آپ اس کو انزپ کریں گے، ظاہر ہے وہ ذرا بڑھ جائے گی، اس کی جو سائز ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. جو دوسرا میں نے لنک شیئر کیا ہے جس کا نام ہے الشاملہ الذہبیہ، گولڈن شاملہ، وہ اصل میں اسٹینڈرڈ ورژن ہی ہے، لیکن اس میں کم و بیش 30,000 کتابوں کا مجموعہ ہے. بالکل ہو بہو یہی ہے، یہی فیچر ہے، ساری خوبیاں یہی ہیں، فرق صرف کتابوں کی تعداد کا ہے. تو اگر کسی کو بہت زیادہ کتابیں حرف علم و فن میں چاہیے تو وہ یہ الشاملہ الذہبیہ جو 16 GB اور سم تھنگ کچھ ہوگا غالباً یہ فائل، تو 16 GB آپ اس کو کسی طرح اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو انزپ کریں. اس میں بھی اگر سیٹ اپ کی فائل ہے تو چلائیں، اگر فائل نہ ہو سیٹ اپ کی تو اس کا مطلب یہ کہ براہ راست جو شاملہ کا آئیکون ہوگا اسی سے وہ رن کر جائے گا، اس کو سیٹ اپ چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں نے دونوں آپشن رکھے ہیں، جس میں زیادہ دلچسپی ہے، اگر چھوٹا سافٹ ویئر رکھنا ہے، بہت زیادہ کتابوں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ باحثین.com والا لے لے. اگر کسی کو بہت وسیع لائبریری درکار ہے تو وہ الشاملہ الذہبیہ کا 16-17 GB والا فائل ڈاؤن لوڈ کرے، جس کو انزپ کرنے کے بعد کم و بیش 57 GB وہ جگہ آپ کی لے لے گا ہارڈ ڈسک. یہ دونوں سوالوں کے جواب ہوں گے.
السلام علیکم جی، پوچھنا.
وعلیکم السلام.
पूछना था, मैं हम फर्स्ट टाइम ये इसको यूज कर रहे हैं, इसमें उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है पूरे सॉफ्टवेयर में?
जी ये सारा सॉफ्टवेयर असल में अरबी में है, इसके अंदर कोई उर्दू ट्रांसलेशन नहीं है और उर्दू जबान की कोई उसके साथ ये कंपेटेबल भी नहीं है, और इसका कोई ऐसा वर्जन नहीं पाया जाता मकतबा शामिला का कि जो उर्दू जबान में हो या जिसमें उर्दू ट्रांसलेशन कर दी गई हो। ये अलबत्ता है कि इसका एक महदूद वर्जन इसी में अरबी में ही मोबाइल पर भी गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल के ऐप स्टोर पर वो दस्तियाब है, लेकिन वो इतना वसी लाइब्रेरी नहीं है, इतनी वसी नहीं है, उसमें महदूद किताबें हैं, फीचर्स भी महदूद हैं। उर्दू का कोई वर्जन मकतबा शामिला का अपना कोई नहीं है।
जी अमित भाई, ये मकतबा शामिला में क्या सारी किताबें अरबी में ही है, उर्दू अंग्रेजी में है या नहीं?
इसके बाद ऐसे वर्जन हैं जो अंग्रेजी में भी गालिबन किताबें शामिल हुई हैं, लेकिन जो ऑफिशियल वर्जन है उसमें कोई दूसरी किताब, दूसरी जबान की किताब मौजूद नहीं है। जैसे कि मैंने ये अर्ज किया कि लोगों ने ऑफिशियल वर्जन जो कि 6000 समथिंग किताबों का है उसके ऊपर इजाफा करते हुए किसी में 10,000, किसी में 15,000, किसी ने 30,000, किसी ने इससे भी ज्यादा किताबें उसके अंदर अपलोड कर दी हैं, शामिल कर दी हैं, उसकी पीडीएफ भी डाल दी हैं। उन लोगों ने बहुत से वर्जन में, अपने जाती वर्जन में वो डाल दिए, अंग्रेजी की किताबें भी डाली हैं। वो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर का इसी का वर्जन है, उसमें अंग्रेजी की किताबें भी हैं, लेकिन ऑफिशियल है उसमें नहीं है।
लेकिन उर्दू की नहीं है, किसी ने नहीं डाली?
उर्दू की नहीं है, उर्दू की नहीं है कोई। कोई
ठीक,
रिजवान हैदर साहब का सवाल है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व
रहमतुल्लाह। अमर भाई, बहुत अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, बहुत खूबसूरत अंदाज से आपने सारी वजाहत फरमाई है। सवाल ये है कि ये जितने इसमें किताबें मौजूद हैं इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके बारे में, मतलब कोई किताब अगर हम देखते हैं तो उसकी जो ओरिजिनल तवात थी उसमें और इसमें कोई कहीं कहीं फर्क भी है या बिल्कुल सेम है ये? शुक्रिया।
देखें जी, मिसाल के तौर पर तफसीर तबरी हमारे सामने ये फुल व्यू में है, अर्ज कामिल में है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके यहाँ भी देखें, बिताकतुल किताब का एक आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है, ये सफेद वाला, इसको जैसे ही क्लिक करते हैं बिताकतुल किताब लिखा आता है। जैसे मैं खोलूंगा तो इसका मतलब ये है कि दुनिया भर में तफसीर तबरी तो दसियों, क्या मतलब सैकड़ों की तादाद में छपी हुई होंगी, मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ मकतबात से। तो जो जो एडिशन इस किताब का यहाँ जो हमने खोल रखी है, हो सकता है 2-3-4 किस्म के और भी एडिशन मकतबा शामिला में तफसीर तबरी के हों। जो भी आपने खोली होगी उसका बिताका जैसे ही खोलेंगे तो आप देखें कि इसकी यहाँ मालूमात हैं, ये मालूमात हैं कि ये किताब, ये इस पर तहकीक किसने लिखी है, जो एडिशन यहाँ शामिल किया उसका नाम है मौकिक का, जहां से शामिल हुई है वो भी है, जहां से शाया हुई है नाशिर का नाम भी है, जिस साल में शाया हुई है वो भी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो नंबरिंग है, जो देखें दाएं तरफ आपको रिवायतों की नंबरिंग आ रही है, तो वो नंबरिंग भी बताया कि जो किताब छपी है ना, मुआफिक लिल मतबू, छपी हुई किताब जो ये एडिशन है हूबहू वही नंबरिंग इसमें मौजूद है, ठीक है। तो किताब के हवाले से सारी मालूमात मैं अर्ज कर चुका हूँ कि बिताकतुल किताब जब भी आप खोलेंगे तो ये मालूमात है। इसी किताब के बारे में तफसीली अगर मालूमात और भी हुई तो इस टैब में भी है, और मौलिफ के बारे में मालूमात यहाँ भी है। तो ये किताबें शामिला में जो है उसका पूरा रेफरेंस, जो भी उन्होंने एडिशन जहां से जिस मुल्क से छापा हुआ लिया है और उसी को हू बहू नंबरिंग, पेज नंबर, जिल्द और जुज के साथ किया है, ये बिताकतुल किताब आप जैसे ही खोलेंगे वो आपको दिखाई देगी। तो ये इसी तरह मुस्तनद मुस्तनद है जी, बिल्कुल।
जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। और ये एक अर्ज थी, इसके बाद अगर कुछ सेशन होते हैं तो मकतबा जबरील, चूंकि उर्दू किताबों का एक मकतबा है, उस हवाले से भी कुछ रहनुमाई फरमाइएगा
जी। इंशाल्लाह, जरूर।
शुक्रिया जी।
बहुत शुक्रिया जी आपका। ये मैं ये इसमें क्लासिकल और ये चीजें जदीद अरबी अदब, मतलब कोई रिवायत जो है अरबी नावल वगैरह, ये भी शामिल की गई है किसी वजह?
इसमें जरा देखना होगा, वैसे जो जिन लोगों ने जरा वाफिर मकदार में वर्जन तैयार किए है ना, उसमें तो जरूर होगा, اس میں تو ضرور ہوگا. مثال کے طور پر میرے پاس تین چار وہ ہے مختلف ورژنز ہیں, میں اس میں تلاش کر کے دکھا سکتا ہوں, آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جو لمیٹڈ ورژن ہے اس میں تو نہیں ہے بہت, لیکن جس میں 10 اور 20 اور 30 ہزار یا اس سے زیادہ کتابیں ہیں اس میں تلاش کرنے سے بآسانی ہمیں مل سکتی ہیں, اس کو دیکھا جا سکتا ہے.
مطلب کہ وہ کاپی رائٹ وغیرہ کے بھی مسئلے ہوتے ہیں نا, تو اس کے جدید بھی مطلب ہے کہ شامل.
جی جی, وہ بغیر جن کی طرف سے ظاہر ہے اجازت ملی ہوگی وہی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں, اور جہاں سے اجازت نہیں ان کو ملی ہوگی تو وہ شامل نہیں ہوئے.
اوکے,
یہ بات ٹھیک ہے.
اگر یہ ہو سکے نا کسی سیشن میں تو تھوڑا سا بتا دے,
میں ضرور تلاش کر لوں گا, اگر ہوا تو ضرور ضرور دکھا.
جی میں پوچھ رہا تھا کہ اکثر ہم حوالہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں مشکات کے, تو کوئی روایت سرچ کرتے ہیں تو اس کا حوالہ نہیں ملتا ہمیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ جب آگے ہم ابھی سرچنگ کا کے ٹول سیکھیں گے نا تو اس وقت آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کوئی بھی حدیث نمبر سے یا الفاظ سے یا حدیث کی نصوص سے کیسے تلاش کی جاتی ہے, اور اگر کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی, تلاش نہیں کر کے دے رہا سافٹ ویئر, تو اس کی وجہ ہے باقاعدہ ٹیکنیکل وجوہات ہیں, وہ میں باقاعدہ سمجھا دوں گا انشاءاللہ اگلے سیشن میں. یہ دیکھیں, یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے سرچنگ کے, یہ آپشن, یہ سب سے اہم ترین چیز ہے, انشاءاللہ اس میں ہم سیکھ لیں گے اس کو, بالکل آپ کو مل جائے گا. اچھا, اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا, ایک چیز میں شاید آپ لوگوں کو متنبع کرنا رہ گیا ہے کہ جو لنک دونوں سافٹ ویئر کے لنکس میں سے جو لنک باحثین ڈاٹ کام کا ہے, جو 4 GB کا سافٹ ویئر ہے مکتبہ شاملہ, اس پیج کو جب آپ کھولیں گے تو جہاں یہ لکھا ہوا آپ کو دکھائی دے کہ اسٹینڈرڈ ورژن کا ڈائریکٹ لنک, اسی کو کلک کیجئے گا. یعنی اس کے اوپر اور دو تین بٹن اور بھی ہوں گے, اور بھی لنکس ہوں گے کہ آفیشیل ویب سائٹ کا پیج کا لنک ہے یا وغیرہ وغیرہ, جہاں لکھا ہو نا کہ براہ راست ڈاؤن لوڈ, فائل ڈاؤن لوڈ کریں, براہ راست مکتبہ شاملہ ڈاؤن لوڈ کریں, تو بس اس صفحے پر جا کر وہیں کلک کرنا ہے. اگر آپ آفیشیل پیج وغیرہ کے اس لنک پر چلے گئے تو وہاں سے آپ کو نہیں ملے گا. اگر کوئی مشکل ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر بھی کر سکتا ہوں, آپ اگر دیکھنا چاہیں. یہ چونکہ آخری منٹ چل رہا ہے, میں دکھا بھی دیتا ہوں آپ کو یہ اپنی اسکرین شیئر کر کے. یہ دیکھیں جی, میں نیو شیئر کر رہا ہوں. آپ کو یہ پیج دکھائی دے رہا ہے آپ حضرات کو, باحثین ڈاٹ کام کا پیج دکھائی دے رہا ہے اب جو کھلا ہوا ہے؟
جی جی دکھائی دے رہا ہے.
جی جی, یہ دو لنک ہے نا, یہی دو لنک ہے آپ کے سامنے, یہ دونوں ٹیب ہیں. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ والا جب لنک ہے نا باحثین ڈاٹ کام, اس پہ جو اسٹینڈرڈ ورژن موجود ہے اس پیج پر, یہ آپ کو آخری والے پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کریں. ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے جو بٹن ہے یا لنک ہے ان کو آپ چھوڑ دیں, آخری والے کو ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ پر جا کر کلک کرنا ہے, 4 GB والا جو 6000 کتابوں والا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ دوسرا بھی دیکھ لیں آپ. یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے دوسرا ٹیب جو کھولا ہے, وہ دکھائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟
جی جی ہاں جی, دکھائی دے رہا ہے.
دکھائی دے رہا ہے, اچھا جی. اس پہ دیکھیں اوپر شاملہ الذهبیہ ہے, اصل میں اس میں آپ کے پاس یہ نیچے جو ہے یہ دیا ہے لنک, جس کو آپ کاپی کر کے چلے جائیں گے. یہ دیکھیں یہ لنک ہے, اس کو کاپی کریں اپنے کروم میں یا انٹرنیٹ ایکسپلورر میں جا کر پیسٹ کر کے اس کو کھولیں, وہاں آپ کو یہ جو کم و بیش 30,000 کتابوں کا ورژن ہے وہ آپ کو مل جائے گا. اس کے خوبیاں بہت ہیں, اس والے میں بہت سی خوبیاں موجود ہیں. اگر کوئی اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے اپنی ہارڈ ڈرائیو میں کہ وہ 57 یا 60 GB تک کسی ڈرائیو میں رکھتا ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اتنی کتابوں کی, تو پھر وہ اس لنک کو جا کر کاپی کرے اور وہاں یہ فائل ان کو مل جائے گی, اس کو ڈاؤن لوڈ کرے, 16-17 GB کا یہ ہے. تو یہ دونوں میں بتا رہا تھا, انہی دونوں کے لنکس انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں گے واٹس ایپ پر.